नमस्कार। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा अपनी आभा से रात की स्याही पर अपनी चमक बिखेर कर रात को रोशन करता है, तब वो रोशनी हमें इस एहसास से भर देती है कि जीवन में जो रात सा अंधियारा है उसे हमारे ज्ञान की रोशनी ही मिटा सकती है। मगर वो कहते हैं ना कि ज्ञान एक परंपरा है और वो हमारे गुरुवर ही होते हैं जो हमें इसके तहत ज्ञान की रोशनी प्रदान कर हमें तम से ज्योति की ओर ले जाते हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। संत कबीर लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परिक्रमा के इस नवीन अंक में मैं प्राची प्रिया आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट शेफाली सिंह। शेफाली, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार प्राची, एंड हेलो डियर लिसनर्स। सो जैसा कि प्राची ने हमें बताया, आज हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड बुद्धाज फर्स्ट सर्मन दैट ही गेव एट सारनाथ। सो लेट्स स्टार्ट आर आफ्टरनून विद सम ऑफ हिज टीचिंग्स, वन ऑफ विच इज टू फॉलो द एट फोल्ड मिडल पाथ, यू नो, टू लिव अ लाइफ इन मॉडरेशन एंड लीविंग आर एक्सट्रीम्स। एंड गुरुज, एज वी ऑल नो, हैव ऑलवेज मेड अ मार्क, बी इट अर्जुन्स गुरु द्रोणाचार्य और हेलन केलर्स टीचर एन सलिवन और सावित्री बाई फूले और आवर वेरी डियर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑल दीज टीचर्स हैव मेड अ मार्क एंड इट्स अप टू अस दैट वी कंटिन्यू their teachings and learn from them. So on that note, let's start our today's program, Parikrama. And for you, we have a selection of news, discussion segment, Dateline India, reports, capsules and much more. All of this over the next 30 minutes. And now we shall begin with the headlines first. All party meeting held in Delhi ahead of budget session of parliament beginning tomorrow. Government seeks cooperation from all political parties for smooth functioning of parliament.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत में पहली बार हो रही विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे।
थ्री पिलग्रिम्स किल्ड एंड फाइव इंजर्ड इन लैंडस्लाइड ऑन केदारनाथ यात्रा रूट इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड।
समाज में शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है।
In Women's Asia Cup T20 cricket, match between India and UAE underway in Sri Lanka.
और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का सामना नूनो बोर्जेस से होगा।
And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So now we know that India is known for its rich heritage, which is reflected in its culture, traditions, arts, crafts, architecture, monuments and religions. India's heritage is vast and vivid, with each ethnic group having its own unique traditions and culture. India's heritage also serves as a bridge that connects people across borders, transcending language and ideology. The scenic beauty of India is unparalleled, with landscapes ranging from the majestic Himalayas in the north to the serene backwaters of Kerala in the south. One of the most remarkable aspects of India is its linguistic diversity. So, we can say that in a nutshell, India is a treasure trove of different things.
Definitely, definitely. And वैसे भी भारत के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसकी भाषाई विविधता भी है। पूरे देश में बोली जाने वाली 1600 से अधिक भाषाओं और बोलियों के साथ भारत वास्तव में विविधता में एकता की अवधारणा का प्रतीक है। हर भाषा अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, ये हम जानते हैं। शेफाली, लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक से वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय यूनेस्को के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। समिति विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करने के साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों का भी निर्णय करती है।
जी, एंड प्राची प्रिया, क्योंकि आप भाषाओं की विविधता की बात कर रहे थे, तो अक्सर कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर 20 किलोमीटर पे हमारी भाषाएं बदलती
हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डायलैक्ट, सो दैट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। एंड नाउ कमिंग टू द वर्ल्ड हेरिटेज डे, सो An important aspect of this is that UNESCO recognizes heritage sites in three categories: cultural, natural and mixed. At present, the World Heritage List includes 1,199 heritage sites. Italy has the highest number of sites on the UNESCO World Heritage List with 59, followed by China with 57. India is in the sixth place with 42 sites, with the Hoysala's temples of Karnataka being the 42nd Indian site. The first sites included Ajanta Cave, Ellora Cave, the Taj Mahal in Agra, the most world-famous Taj Mahal I'd say, and the Agra Fort in Uttar Pradesh. All these sites were included in 1983.
कितना खूबसूरत है. विश्व धरोहर समिति की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति और कला से रूबरू होंगे. इसके तहत भारत मंडपम को ऑटोमोबाइल स्क्रैप से सजाया जाएगा और भारतीय संस्कृति को कलाकृतियों से दर्शाया जाएगा. ये कलाकृति महिला सशक्तिकरण से लेकर भारत के पौराणिक इतिहास को भी बयां कर रही है.
जी, ऑल्सो एन इनक्रेडिबल इंडिया एग्जीबिशन विल बी सेटअप टू हाईलाइट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, एज ओल्ड सिविलाइजेशन, जियोग्राफिकल डायवर्सिटी, टूरिज्म डेस्टिनेशंस अलॉन्ग विथ मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो वी कैन से दैट कल्चर involves everything.
Yes.
It's not just our heritage, our past traditions, but it's also giving us an identity which leads us to the future.
Bilkul. Rang roop, khan paan, rehna, sehna, veshbhusha, sab kuch. Included hai. To aaiye, Shefali jante hain hamari samvaddata se iske baare mein aur adhik.
Bilkul.
इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे. भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए भारत मंडपम में कई प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी. रिटर्न ऑफ ट्रेजरर्स प्रदर्शनी में देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा. अब तक 350 कलाकृतियां वापस लाई गई हैं. वहीं अतुल्य भारत प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यता, भौगोलिक विविधता, पर्यटन स्थल तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के क्षेत्र में आधुनिक विकास को प्रस्तुत किया जाएगा. विश्व विरासत समिति की बैठक के अलावा विश्व विरासत युवा पेशेवर मंच और विश्व विरासत स्थल प्रबंधक मंच का भी आयोजन किया जाएगा. नई दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार.
अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है.
So Prachi, let's head north and see how Ladakh's transition to a union territory has opened numerous opportunities for its youth to excel in sports at national and international levels. This progress is further bolstered by the support of corporates and foundations adopting villages, areas and players from Ladakh.
The M3M Foundation in collaboration with YFLO Delhi is a key player in this movement, championing youth development and sports in the region. These efforts have spotlighted the incredible talent of Shehnaz Parveen, an international taekwondo player from Sangpo Kargil, Union Territory of Ladakh. Dr. Payal Kanodia, chairperson of YFLO Delhi, awarded Shehnaz the prestigious Lakshya Scholarship for recognizing her sports excellence and covering all her training, travel and tournament expenses. Shehnaz expressed deep gratitude for this life-changing opportunity, highlighting the foundation's crucial role in overcoming her financial obstacles. Gulzar Hussain Munshi, President, Ladakh Taekwondo Association, praised the MTM Foundation's support and emphasizing the financial challenges faced by local athletes and transformative impact of such partnerships in UT Ladakh. This collaboration marks a significant milestone in the development of sports in Ladakh, inspiring countless aspiring athletes. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
And Prachi, we were talking about Guru Purnima Day, and one of its important aspect of any teaching-learning relationship is the exams and their sanctity. So in that context, in order to curb the irregularities and use of unfair means in public examinations, Arunachal Pradesh government tabled the Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 in the State Assembly on Friday, on the first day of the budget session. The budget session of the Arunachal Pradesh Assembly started on Friday and will conclude on July 26.
Suniye ek report.
The Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in the Recruitment Bill 2024 has strict provisions of punishment of imprisonment and penalties, debarring of candidates from appearing recruitment examinations, as well as attachment and confiscation of property. A provision dealing with designations of special court for speedy trial of such offences has also been provided in the bill. Chief Minister Pema Khandu said that once the bill is passed, no one will dare to do malpractices. Mr. Khandu said that the Arunachal Pradesh Public Examination Bill 2024 is more stringent than the national law.
हम लोगों का जो examinations का जो bill है उसको table हुआ है तो इसका discussions अभी आने वाला दिनों में किया जाएगा. मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा initiative government की ओर से हम लोग ने किया गया है, खास करके जो ill practices Arunachal में देखने को आया कि examinations में जो paper leak या इस तरह का जो ill practice होता है, तो ये एक बार bill pass हो जाने के बाद में किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि इस तरह का malpractice करने के लिए. कि ये जो बिल हम लोग ने लेके आया है और ये बिल जो है इवन सेंट्रल का पास में भी इस प्रकार से एक बिल है और बाकी स्टेट्स में भी इस प्रकार का बिल कुछ कुछ स्टेट्स ने बनाया हुआ है. तो हम लोग ने अपना राज्य की ओर से कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग ने निकाला. तो ये जो बिल जो प्रोड्यूस जो हम लोग अभी टेबल में ले किया आज टू प्रिवेंट द अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन, उसमें देखा जाएगा तो इवन हम लोगों का जो लॉस है स्ट्रिंजेंट इज मोर स्ट्रिंजेंट देन द नेशनल लॉस. तो डेफिनेटली ये बिल आने का बाद में खास करके जो आज के टाइम में जो युवाओं लोग एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दे विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड.
फॉर परिक्रमा दिस इज राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, ईटानगर.
And Prachi, you would agree and so would our listeners that the world is witnessing a huge increase in the use of artificial intelligence across all sectors today. Considering this, the Maharashtra government recently established the Marvel Company. It aims to aid the state police force in solving crimes with the help of artificial intelligence.
Bilkul, suniye hamare sambhadata se ek report.
MARVEL, the short form of Maharashtra Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement, is a company established by the state government to increase surveillance capacity and the ability to predict crimes. State government has claimed that Maharashtra is the first state to adopt AI in law enforcement. It will help the police force to understand the modus operandi of the criminals and analyze the available information to predict future crimes. MARVEL was registered in May 2024 as per an agreement between the state government, the Indian Institute of Management and a private company based in Nagpur. The decision to establish a special purpose vehicle based on artificial intelligence was taken in the state cabinet meeting on 16th March this year. In a recent meeting held in Mumbai, chaired by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and attended by senior officials from police and administration, a detailed presentation was given in this regard. The private company engaged in this initiative will provide AI solutions as per the requirement of the police, and IIM will help in research and training. MARVEL is headquartered on the campus of IIM Nagpur. The Superintendent of Police Nagpur Rural and the Director of IIM Nagpur will serve as the ex-officio directors of MARVEL, whereas the Director of the Nagpur-based private company will serve on the Board of Directors. The Superintendent of Police Nagpur Rural will also act as the ex-officio Chief Executive Officer of MARVEL. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
और अब समय है जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से डिफेंस न्यूज कैप्सूल का. इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ.
आज का ये डिफेंस न्यूज कैप्सूल कुछ खास है क्योंकि आज आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसी महिला सैन्य अधिकारी से जिन्होंने कारगिल युद्ध में तब हिस्सा लिया जब वह प्रेग्नेंट थी. उन्होंने बिना परवाह किए अपने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और सेना में नारी शक्ति की पर्याय बनी. कैप्टन यशिका त्यागी 1997 में लेह के ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अधिकारी थी. तब वह लॉजिस्टिक विंग में कार्यरत थी. बाद में 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब उन्हें सेवा देने के लिए बुलाया गया और वह उस वक्त गर्भवती थीं. युद्ध के बाद उन्हें उनकी सेवा के लिए कई पदकों विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया और वे करगिल युद्ध का हिस्सा बनने वाली भारतीय सेना की लॉजिस्टिक विंग की पहली महिला अधिकारी बनी। आज जब पूरा राष्ट्र कारगिल विजय वर्ष की रजत जयंती मना रहा है, आइए सुनते हैं कैप्टन यशिका त्यागी का आकाशवाणी के परिक्रमा को दिया यह विशेष संदेश।
पाकिस्तान के पास समय भी उनकी पसंद का था, जंग का स्थान भी उनकी पसंद का था, किस तरीके से लड़ना है पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी उनके हाथ में थी, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? भारतीय सेना की। तो ये है भारतीय सेना की हिम्मत, हौसला और ट्रेनिंग।
मैं कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली भारत के लॉजिस्टिक्स विंग से पहली महिला अफसर,
एक औरत के नाते अगर मैं आपको बताऊं तो ये जंग के मेरे लिए कई और मायने थे। मेरे पति इस जंग में हिस्सा ले रहे थे तो एक पत्नी के नाते मेरा ध्यान उनकी ओर था, मेरा 3 साल का बेटा मेरे साथ था और मेरे मन में हमेशा यह ख्याल आ जाता था कि अगर दुश्मन की गोलाबारी से कहीं मेरे पति और मैं हम दोनों चले गए तो इस बच्चे का क्या होगा। और एक 6 महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। मुझे लगता है ये सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जब आप वर्दी पहन लेते हैं, क्योंकि तब वो ऊपर वाला है और ये भारत माँ है। माय रोल एज एन ऑर्डिनेंस ऑफिसर वॉज टू इक्विप द फाइटिंग फोर्सेज टू फाइट एन इफेक्टिव बैटल अगेंस्ट एनिमी। गोला बारूद, हर तरीके का गोला बारूद, यानी बड़ी बड़ी गन्स, बोफोर्स गन्स से लेकर उनके राइफल्स और कार्बाइन्स तक। तो एक फौजी तब तक लड़ाई कर सकता है जब तक उसके बंदूक में गोली है। जंग के समय ना सोने का समय था, ना रेस्ट करने का समय था, ना खाना खाने का समय था। मुझे याद है उस दौरान मैं तकरीबन 7 दिन लगातार उन्हीं कपड़ों में अपनी यूनिट के अंदर खड़ी रही। उनके हारे हार है, मन के जीते जीत। ये शरीर, आपका जेंडर, भारतीय सेना के अंदर ये कुछ मैटर नहीं करता। फ्रॉम डे वन यू आर अ लीडर, फ्रॉम डे वन आप सेम वर्दी पहनते हैं, फ्रॉम डे वन आपके कंधों में वही स्टार्स लगते हैं, पहले दिन से ही आप वही सैल्यूट करते हैं और वही सैल्यूट आपको मिलता है।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरव।
और अब समय हो चला है कि आपको हम ले चले आजादी के सफर में।
भारत आमार, भारत वर्ष, स्वदेश आमार, स्वप्न गो तुमाते आमुराल भिया जनुम, धन्य होएछि धन्य गो।
21st of July is the death anniversary of one of the pioneer leaders of the nationalist movement, Umesh Chandra Banerjee. Born on the 29th of December 1844 in Calcutta, Banerjee went to England to study law in 1864. In 1868, he returned to Calcutta and started his legal practice. He was able to gain a good reputation as a barrister. In 1882, he became the first Indian to be appointed as a standing counsel. He famously defended Surendranath Banerjee in a case in the High Court of Calcutta.
Umesh Chandra Banerjee was the president of the first session of the Indian National Congress in December 1885 at Bombay. In the second session the following year, which was presided over by Dadabhai Nauroji, Banerjee suggested that the party form standing committees for every province to have good coordination of its functioning. Banerjee was president of the party one more time in 1892 at Allahabad.
He also lived in England for a while and practiced law there. While he was a resident there, the Liberal Party gave him a seat to contest in the elections to the House of Commons. Although he was defeated, he became the first Indian to contest elections for the British Parliament. He passed away in Calcutta in 1906, aged 61. Salutes the nationalist leader Umesh Chandra Banerjee.
वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे।
We remember freedom fighter Jairam Das Daulatram, who was born on the 21st of July 1891 in Karachi, now in Pakistan. In 1915, Jairam Das came into personal contact with Mahatma Gandhi and became his follower. He also participated in the Home Rule movement. Jairam Das joined the Indian National Congress and participated in the non-cooperation movement in 1920. He was also a leading activist in the Salt March and the Quit India movement.
Jairam Das
Jairam Das stayed in India during the partition and was appointed the first Indian governor of Bihar. He represented a constituency from Punjab in the Constituent Assembly of India. From 1950 to 1956, Daulat Ram served as the governor of Assam. He breathed his last on 1st of March 1979. Salutes the great nationalist.
We also remember the last Mizo Azad Hind Fauj member, that Thoma Rentley, who died on the 21st of July 2019. Born in 1920 in the state's Pukpui village, Rentley had served in the medical corps of the Indian Army prior to becoming a freedom fighter. During World War II, he was sent to Malaysia, where he had fought the invading Japanese soldiers. However, he was captured and taken to Singapore as a prisoner of war.
He met Netaji Subhash Chandra Bose when the latter once visited the prison. Following his release, he joined the Azad Hind Fauj and fought the British Army in Myanmar along with fellow rebels and Japanese soldiers. However, they surrendered in the aftermath of the bombings in Hiroshima and Nagasaki. The British convicted Rentley for waging a war against them and put him behind bars. He was released 2 years later in 1945, following the intervention of Mahatma Gandhi.
The Indian government awarded him the Tamra Patra in 1972 for his role in the struggle for Indian independence. The noble soul breathed his last on the 21st of July 2019 at the age of 99. We salute this great independence fighter.
अब सीधे चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। स्विस ओपन पुरुष फाइनल्स में राफेल नडाल का मुकाबला नूनो बोर्जेस से आज शाम बोस्ताद में होगा।
एंड इन मेंस डबल्स फ्रेंच पेयर ग्रेगोर जैक एंड मानुएल ग्विनार्ड विल फेस ब्राजीलियन कॉम्बिनेशन ओलैंडो ल्यूज एंड राफेल माथोस इन द फाइनल दिस आफ्टरनून।
सुइयां जो है शेफाली वो बढ़ रही हैं और बता रही है हमें कि हमारा जो सबसे खूबसूरत सेगमेंट है वो अब शुरू होने वाला है, यानी कि अब समय आ गया है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या उनका जन्मदिन है या आज किसी न किसी रूप में वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी आनंद बख्शी से। कौन नहीं जानता है इनके बारे में, इनकी एक कला, इन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड म्यूजिक को दिया, मतलब कि हिंदी सिनेमा को जो दिया, बल्कि मैं पूरा और इसको एक घेरे में बांध करके लूंगी क्योंकि आज तक उनके गाने हम सुनते आ रहे हैं और हम भी बड़े हुए हैं सुनते हुए, हमसे ओल्ड जनरेशन जो थी वो भी उनको सुन रही थी।
आर्टिस्ट को हम किसी भी तरीके से लिमिट नहीं कर सकते,
बिल्कुल नहीं,
ब्रोकन ऑल बाउंड्री।
बिल्कुल बिल्कुल, आज आनंद बख्शी साहब की जयंती है। आनंद बख्शी बचपन से ही फिल्मों में काम करने के शौकीन रहे थे, उनको था कि हमें शोहरत मिले। जिस तरीके से उन्होंने कभी देखा होगा अपने बचपन में किसी को नाम, फेम और नेम कमाते हुए, तो उन्होंने, लेकिन क्योंकि हमारे समाज में है ना कि अगर आप सपने ज्यादा ऊंचे देख लें तो उसे हमेशा जो है खींचा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, मगर बच्चे का दिल क्या मानता है।
जी, और हर आर्टिस्ट बनने से पहले एक बागी होता है, वो रिबेल, रिबेलियन उनके दिल में हमेशा बसा ही होता है।
बहुत सही बात कही आपने। तो उन्होंने कभी अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में एक गायक के रूप में मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते थे, मगर ये शायद नियति को मंजूर था कि वो एक संगीतकार के रूप में जो है वो उभर करके आए।
बिल्कुल। And I would like to tell our listeners that in 1958, Bakshi got a chance meeting with the actor Bhagwan Pallav, who offered him a job to write the lyrics for his film Bhala Aadmi. He eventually got his big break in Suraj Prakash's Mehndi Lage Mere Haath and Jab Jab Phool Khile. And finally, it was only with the 1967 blockbuster Milan that he was recognized as a lyricist par excellence. And the golden age followed for Bakshi after that, during which he wrote lyrics for box office hits like Amar Akbar Anthony, Ek Dooje Ke Liye Bane, Sholay and his favorite film Amar Prem. So without any further delay, let's listen to one of my favorite songs that he wrote lyrics for, Bade Achhe Lagte Hain.
Bade अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना
और
तुम
और आज गंगूबाई हंगल की पुण्यतिथि है। भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी गंगूबाई हंगल। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की प्रतिनिधित्व किया और जितनी भी जातीय बाधाएं हैं उसको पार करके, और बल्कि वो एक महिला भी थी और उस वक्त का जो समाज था महिला को लेकर के काफी बंधन रखता था, बावजूद उसके उन्होंने अपनी पहचान जो है संगीत की दुनिया में बनाई। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के ने मतलब हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी लोग दिए, जिनमें से एक थी गंगूबाई हंगल।
बिल्कुल। सो हंगल के बारे में थोड़ा बताते हैं। शी वॉज बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली एट एज 15। शी बिकेम अ डिसाइपल ऑफ द हिंदुस्तानी वोकलिस्ट सवाई गंधर्व। बाय द अर्ली 1940s हंगल हैड बिकम अ वेल नोन फिगर इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड हर बिजी शेड्यूल ऑफ कॉन्सर्ट अपियरेंसेज अक्रॉस द कंट्री। फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हंगल रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स। इन 1973 शी रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। Hangal was also awarded the Padma Bhushan in 1971 and the Padma Vibhushan in 2002. So let's listen to her voice. All right, moving on. Today is the death anniversary of Gerald King Goldsmith, an American composer with a career in film and television scoring that spanned nearly 50 years and over 200 productions. He composed scores for 5 films in the Star Trek franchise and 3 in the Rambo franchise. So let's listen to Gerald King Goldsmith's Rambo theme song. He's also, by the way, listeners, I would like to tell you, he's also known for composing the fanfares accompanying the production logos used by multiple major film studios and music for the Disney attraction Soaring. His work for other films include Logan's Run, Planet of the Apes, Tora Tora, and so on. So let's listen to him. And dear listeners, today is the birth anniversary of Robin Williams, an American actor and comedian known for his improvisational skills and the wide variety of characters he created on the spur of the moment. Williams is regarded as one of the greatest comedians of all time. Williams began performing stand-up comedy during the mid-1970s and released several comedy albums including Reality, What a Concept. He rose to fame playing the alien Mork in the ABC sitcom Mork and Mindy. Williams received his first leading film role in the 1980 film Popeye. Williams won the Academy Award for Best Supporting Actor for Good Will Hunting. His other Oscar-nominated roles were for Good Morning, Vietnam, Dead Poets Society and The Fisher King. So let's listen to a song from one of his famous movies, Popeye. I'm Popeye the Sailor Man. And lastly, dear listeners, today is the birth anniversary of Ernest Miller Hemingway, an American novelist, short story writer and journalist. Best known for an economical, understated style, he's often romanticized for his adventurous lifestyle and outspoken, blunt public image. Ernest Hemingway was awarded the 1954 Nobel Prize in Literature. Hemingway, himself a great sportsman, liked to portray soldiers and people with great courage like hunters and bullfighters who were tough at times but also primitive, and he talks about their honesty which is set against the brutal ways of modern society and who in this confrontation process lose hope and faith. So,
बिल्कुल और अब समय हो चला है हमें आपसे अनुमति लेने का तो इजाजत दीजिए प्राची प्रिया और शेफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
नमस्कार.
नमस्कार.